It's a great honor.
और ये बड़ी
privilege for me to be here in Pastor Ravi Raj's church.
और ये हमारे लिए आदर और भाग्य की बात है कि आज हम पास्टर रविराज के कलीसिया में आए हैं.
And I known Pastor Joseph nearly 50 years ago.
और पास्टर जोसेफ को जो है हम करीब 50 साल के पहले से हम जानते हैं.
We used to stand together in 1960 in Flora Fountain in the open air and preach the gospel together.
और 1960 में जो है हम फ्लोरा फाउंटेन में जो है हम खुले जगह पर खड़े रहकर हमने प्रचार किया है.
Those days I was in the Navy and the Lord called me out to serve him 6 years after that.
और उसके बाद जो मैं नेवी में था 6 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया.
वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज चेंज्ड माय ओन लाइफ इज टू डिस्कवर द डिफरेंस बिटवीन द न्यू कवेनेंट एंड द ओल्ड कवेनेंट.
और मेरे जीवन में जो व्यक्तिगत रूप में बड़ा असर किया है वह ये बात है कि इस बात का फर्क को जान ले कि नया प्रमाण नया प्रमाण और पुराना पुरानी प्रमाण.
दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट ट्रूथ्स दैट गॉड revealed to me after I was baptized in the Holy Spirit.
और ये एक सबसे बड़ी जो सच्चाई है जो परमेश्वर ने मुझे बताया उसमें मैं बैप्टिस्मा लेने के बाद.
And as I have traveled around and seen Christians in different parts of the world.
और जैसे पूरे संसार भर में मैं जाता हूँ और मसीह लोगों को अलग अलग देशों में जैसे मैं देखता हूँ.
I have seen very, very, very few people who have understood this difference and therefore experience the blessing of the new covenant.
और मैंने देखा है कि काफी कम लोग जो है इस फर्क को समझ रहे हैं और इसलिए जो है इस नया करार के जो आशीषों का अनुभव कर रहे हैं.
The old covenant was symbolized by the word law.
और पुराना जो वाचा जो है ये नियम से हम उसे बोल सकते हैं.
And the new covenant is symbolized by the word grace.
और नया नियम जो है या नई वाचा जो है ये अनुग्रह है.
There's a lot of difference between the two.
और ये दोनों में यही बड़ी फर्क है.
If you want to know, we know that grace is superior to the law. There's no doubt about that.
और हम जानते हैं कि ये अनुग्रह जो है नियम से काफी बेहतर है उसमें कोई शक नहीं है.
But my observation is that the vast majority of Christians do not know the meaning of grace.
परंतु मेरा समझ यह है कि अनेक मसीह जो है मसीह लोगों में से अधिक लोग जो है ये अनुग्रह का अर्थ नहीं समझते हैं.
What most people understand by grace is a false understanding.
और जो कुछ लोग आज समझते हैं अनुग्रह के बारे में वो जो है वो एक झूठा समझ है.
And then we remain in bondage.
और इस कारण हम जो है बंधन में ही रहते हैं.
Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall set you free."
और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई जो है तुम्हें आजाद करेगी.
How do you know whether you've known the truth or not?
और हम कैसे जाने कि हमने सच्चाई को जाना या नहीं?
Well, the more truth we know, the more free we should become.
और जितना हम सच्चाई को अधिक जानते हैं उतना ज्यादा हम आजाद होना चाहिए.
Freedom is also something which is misunderstood.
और ये आजादी को भी जो है लोगों ने जो है गलत समझा है.
The Bible says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
और बाइबल बताती है कि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर आजादी है.
What is that liberty?
तो वो आजादी क्या है?
Is it liberty merely to clap our hands, raise our hands? And shout and praise the Lord.
और वह आजादी सिर्फ यह है कि हम ताली बजाते हैं नाचते हैं उसकी स्तुति करते हैं आवाज के साथ.
That's less than 1% of the liberty the Holy Spirit brings.
और वो तो जो है 1% से भी कम आजादी है.
But to most Christians, that's about all they understand of liberty.
परंतु अनेक मसीह लोगों के लिए यही जो है उनके लिए आजादी लगता है.
That's not the liberty of the new covenant because they did that even in the Old Testament times.
और ये जो है नया नियम की आजादी नहीं है क्योंकि पुराने वाचा में भी लोग इसी तरह करते थे.
If you read the Psalms, you find that they praise the Lord much better than we do.
और भजन संगीता में जब हम देखते हैं हमसे बेहतर वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे.
But what was it that people could not have under the old covenant?
तो फिर पुराने उस करार में या पुराने वाचा में क्या वे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे?
What is it that grace brought to us which law could not bring to people in the old covenant?
और वह ऐसी कौन सी बात है जो कि अनुग्रह ने हमारे जीवन में लाया है और जो नियम नहीं ला पाया?
There's an expression found in Romans chapter 8 and verse 3.
और रोमियो के 8वां अध्याय 3रा वचन में एक वचन हम देखते हैं.
Where it says there's something that the law could not do.
और यहाँ पर लिखा है कि वह बात जो नियम नहीं कर पाया.
There was something that the entire old, you know, entire Old Testament times people could not experience.
और ऐसी कुछ बात थी जो कि पुराने नियम के काल के सब लोगों ने जो है इस बात के अनुभव नहीं कर सके.
And that could only be possible after the day of Pentecost.
और वह सिर्फ तभी संभव हो सकता है कि वह कि पेंटेकोस्ट के दिन के बाद.
Now it cannot be just speaking in tongues.
और ये जो है सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही नहीं है.
That's a good gift of God. We praise the Lord for it.
और वो तो परमेश्वर का अच्छा वरदान है. हम उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं.
But it must be something more. Jesus himself never spoke in tongues.
और ये तो इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए क्योंकि यीशु स्वयं कभी अन्य भाषा में नहीं बोले.
And he said, "Follow me." He said, "Follow me."
और उसने कहा कि मेरे अनुकरण करो.
There was something that Christ had. Which we can have.
और ऐसी कुछ बात है जो यीशु मसीह के पास था और हम भी उसे पा सकते हैं.
Which nobody in the Old Testament could have.
और जो कि पुराने नियम के किसी ने जो है उसे प्राप्त नहीं किया.
That is what grace brings.
और वही अनुग्रह लाता है.
And if you want to know how much higher is grace than law.
अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अनुग्रह जो है नियम से कितना ऊंचा है.
It is as much higher as Jesus Christ is than Moses.
और वो मूसा से यीशु मसीह जितना ऊंचा है उतना ऊंचा है.
The law came by Moses.
और नियम जो है मूसा के द्वारा आया.
Grace came through Jesus Christ.
अनुग्रह जो है यीशु मसीह के द्वारा आया.
That's what we read in John 1:17.
और यूहन्ना 1:17 में वही हम पढ़ते हैं.
And we read in Hebrews that the old covenant was sanctified by the blood of bulls and goats.
और हम हिब्रानियों में पढ़ते हैं कि पुराना नियम जो है शुद्धिकरण उसका होता था बैल बकरियों के लहू से.
But the new covenant is, you know, through the blood of Jesus Christ.
परंतु नया करार जो है, नई वाचा जो है, यीशु मसीह के रक्त से.
If you want to know how much higher the new covenant is in the old covenant, it's the blood of Jesus, higher than the blood of bulls and goats.
तो अगर हम जानना चाहते हैं कि नया वाचा कितना ऊंचा है पुराने वाचा से, वो यह है कि यीशु मसीह का रक्त जो है, वो भेड़ बकरियों के रक्त से जितना ऊंचा है, उतना ऊंचा है.
That's why Jesus said in Matthew chapter 11.
और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय में उन्होंने कहा.
He said in verse 11 these amazing words.
और मत्ती 11 अध्याय में उन्होंने कहा.
He looked at all the people who lived from the time of Adam, and he said that the greatest person ever born, verse 11, was John the Baptist.
और 11वां वचन में हम देखते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लिया है लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं है नहीं हुआ.
Right up to the time of Christ, the greatest human being ever born was John the Baptist.
और यीशु मसीह के आगमन तक जो भी इस संसार में व्यक्ति पैदा हुआ है सबसे महान जो है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है.
Not in man's eyes, in God's eyes.
और मनुष्य की दृष्टि में नहीं परंतु परमेश्वर की दृष्टि में.
And John the Baptist must have lived a very holy life.
और ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो एक पवित्र जीवन जिया होगा.
More than Elijah, Elisha, Moses, everybody.
और Elijah, Elisha और मूसा ये सब लोगों से भी ज्यादा.
And yet the most amazing statement in that verse is here.
और फिर इस वचन में और चकित करने वाली बात ये है.
That the least person in the kingdom of heaven is greater even than him.
फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है.
You know the old covenant was a kingdom of earth.
और पुरानी वाचा जो है ये पृथ्वी के राज्य के बारे में है.
The new covenant is the kingdom of heaven.
और नई वाचा जो है ये स्वर्ग के राज्य के बारे में है.
God never promised the Israelites anything in heaven.
और परमेश्वर ने इसराइली लोगों को स्वर्ग में कोई अभिवचन नहीं दिया है.
You read the entire Old Testament, all their promises are earthly.
और पुराने नियम को अगर हम पढ़ते हैं उनके जो भी अभिवचन है इस पृथ्वी के लिए है.
Moses promised them a kingdom on this earth.
और मूसा ने जो है उन्हें इस पृथ्वी में एक राज्य की वादा किया है.
In a certain part of the world called the land of Canaan, the Lord said, I'll give you a kingdom there.
और इस संसार के एक भाग में कनान जगह में जो उसने कहा कि यहाँ तुम्हें मैं एक राज्य दूंगा.
And you read the entire Old Testament,
और पुराने नियम को अगर हम पढ़ते हैं
particularly Deuteronomy 28.
और विशेष करके व्यवस्था विवरण 28 को अगर पढ़ते
हैं, the promises were earthly.
और जो भी आशीषें थी वे पृथ्वी के थी.
I will give you earthly riches.
और मैं इस पृथ्वी के संपत्ति तुम्हें दूंगा.
I will give you earthly houses and lands.
और मैं तुम्हें इस पृथ्वी के घर और जगत दूंगा.
I will give you physical health.
मैं तुम्हें शारीरिक स्वास्थ्य दूंगा.
I'll give you many physical children.
और शारीरिक बच्चे मैं तुम्हें दूंगा.
Your lands will yield much fruit.
और तुम्हारी जमीन जो है अधिक उपज देगी.
Your cattle will multiply. You will become wealthy on this earth.
और तुम्हारी भेड़ बकरियां ये बढ़ते जाएगी आप श्रीमंत हो जाओगे.
Your earthly enemies will all be defeated.
और तुम्हारे पृथ्वी के जो भी दुश्मन है सब हार जाएंगे.
And you will be a great nation on this earth.
और इस पृथ्वी में आप एक महान देश बनोगे.
There was not a single sentence about anything in heaven.
और वहां पर जो है स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
When Christians go after these promises, they are seeking a kingdom on earth.
और जब मसीह लोग इस अभिवचन के पीछे जाते हैं तो वे इस संसार के राज्य की खोज कर रहे हैं.
And that is why they live at an old covenant level.
और इसीलिए वे पुराने नियम के उस स्तर में ही जी रहे हैं.
John the Baptist came with a message.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक संदेश लेकर आता है.
To Israel.
वह इज़राइल के लिए.
Who had spent 1500 years seeking an earthly kingdom.
और जो कि 1500 साल तक उन्होंने इस पृथ्वी के राज्य की खोज करते रहे.
Seeking after earthly riches, earthly blessings, etc., etc., etc.
और ये पृथ्वी के संपत्ति, पृथ्वी के आशीष की वे कोशिश करते रहे.
He said.
और उनसे वह कहता है.
Turn around.
कि आप फिरो, फिर कर देखो.
Repentance means turn around.
और मन फिराना यानी
Repent.
और ये परिवर्तित होना यानी अपने आप को फिराना.
And because now the kingdom of heaven is near.
परिवर्तित हो क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य नजदीक है.
You guys who have spent 1500 years seeking a kingdom of earth, here is the good news. The kingdom of heaven has at last is come close.
और तुम 1500 साल से जो है इस पृथ्वी के राज्य की खोज करते आए हो, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य नजदीक है.
It hasn't come yet.
और वो अब तक आया नहीं है.
But it is near.
परंतु वो अभी नजदीक है.
Then he was imprisoned and killed.
और उसके बाद उसे जो है जेल में डाल दिया और मार दिया.
And Jesus began to preach the same message.
और यीशु मसीह भी इसी संदेश के प्रचार करने लगे.
In Matthew chapter 4 he said the same thing, repent.
और मत्तै 14 अध्याय में कहते हैं कि आप मन फिराओ.
Verse 17, for the kingdom of heaven is near.
और 17वें वचन में कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है.
It hasn't yet come.
और वो अब तक आया नहीं है.
Now it is still a kingdom of earth.
और वो अभी भी इस पृथ्वी का राज्य ही है.
And you guys are all pursuing these earthly things.
और तुम सब जन इसी के पीछे भाग रहे हो.
But very soon kingdom of heaven is going to come.
परंतु बहुत ही जल्दी परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य आएगा.
And that happened on the day of Pentecost.
और वो पेंटेकोस्ट के दिन में हुआ.
So what was the primary purpose of the baptism in the Holy Spirit on the day of Pentecost?
तो फिर वो पेंटेकोस्ट के दिन में जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने का मकसद क्या था?
It was to lift people up from the pursuit of an earthly kingdom to a heavenly kingdom.
और वो ये था कि लोग जो है इस पृथ्वी के राज्य के तलाश में जो कर जा रहे हैं उन्हें जो है उठाकर परमेश्वर के राज्य के तलाश में उन्हें
to lift them up from the pursuit of earthly wealth to riches in heaven.
और इस पृथ्वी के संपत्ति के पीछे वे जो जा रहे हैं, खोज रहे हैं, उससे उठाकर जो है स्वर्ग राज्य की संपत्ति को खोजने के लिए उन्हें बताएं.
To seek more for deliverance from sin than for deliverance from sickness.
और वो ये कि बीमारी से, पाप से जो है ये आजाद होने के लिए वे ज्यादा चाहें यहाँ इससे कि बीमारी से वे आजाद होना चाहते हैं.
Even the terrible disease of AIDS cannot send a person to hell.
और वो भयानक बीमारी जो एड्स है वह भी जो है किसी व्यक्ति को नर्क में नहीं ले जा सकती है.
I have personally met people who had AIDS who got that converted, born again, and who died and have gone to heaven.
और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि एड्स में थे और उन्होंने यीशु को स्वीकार किया, परिवर्तित हुए और वे मरे और वे स्वर्ग गए हैं.
They never got cured of the AIDS, but they went to heaven.
और वे जो है एड्स से चंगाई तो नहीं पाए परंतु स्वर्ग गए हैं.
But Jesus said,
परंतु यीशु ने कहा,
If you lust with your eyes after a woman,
अगर तुम्हारे दृष्टि से तुम कोई स्त्री को जो है इच्छा से देखते हो,
It is better to pull out that eye, otherwise you can keep it and lust it and go to hell.
तो फिर ये बेहतर है कि तुम तुम्हारे आंख को निकाल दे क्योंकि उसे रखकर आप जो नर्क में जाते हैं उससे बेहतर है.
So which is more dangerous?
तो इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक क्या है?
AIDS or lusting with your eyes?
एड्स खतरनाक है या अपने आंखों से हम जो लालच करते हैं वह खतरनाक है?
एड्स कैन नॉट सेंड एनीबॉडी टू हेल.
और एड्स जो है किसी को नरक में तो नहीं भेज सकता.
इट डज सेंड पीपल टू द ग्रेव.
और वो जरूर जो है कब्र तक तो लोगों को पहुंचाता है.
लस्टिंग विद योर आईज मे नॉट सेंड यू टू द ग्रेव.
और ये आंखों से जो लालच करते हैं वो शायद हमें कब्र तक नहीं ले जाएगा.
But Jesus said it can send you to hell.
परंतु यीशु ने कहा कि ये तुम्हें नरक में ले जाएगा.
The devil doesn't want you to know that.
और शैतान नहीं चाहता है कि आप इसे जान लें.
Because he wants your company for eternity.
क्योंकि वह चाहता है कि आप हमेशा हमेशा उसके साथ रहें.
That's why he doesn't want you to know that.
और इसीलिए वह नहीं चाहता है कि आप इससे जानें.
I'm not talking fanciful stories. You read Matthew chapter 5, it is all there.
और मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ. मत्तई के पांचवें अध्याय में हम इसे देखते हैं.
Do you know the first promise in the New Testament?
और नया नियम में पहले अभिवचन को अगर हम देखें.
The very first promise.
सबसे पहला अभिवचन.
Is found in Matthew chapter 1.
और वो मत्तई के पहला अध्याय में है.
Matthew 1 verse 21.
और मत्तई के पहला अध्याय.
The angel told Joseph.
एक किस वचन यूसुफ से स्वर्गदूत कहता है.
You shall call his name Jesus.
कि तुम उसका नाम यीशु रखना.
Because he will save his people from their sins.
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा.
Not he will save them from poverty.
और ये नहीं कि उन्हें वह गरीबी से आजाद करेगा.
Or save them from sickness.
या बीमारी से वह आजाद करेगा.
But he will save them from their sins.
परंतु उनके पापों से उद्धार करेगा.
Because that is the most dangerous and horrible thing that a man has.
क्योंकि मनुष्य के लिए यही सबसे खतरनाक बात है.
Now, it doesn't mean that God will not provide our earthly needs or he will not heal our sickness. That's not what I'm saying.
और इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर इस संसार के कार्यों को हमें नहीं देगा या हमें बीमारी से चंगाई न देगा.
But the angel said the most important thing that Jesus has come to do is to save people from their sins.
परंतु स्वर्गदूत कहता है कि सबसे मुख्य कार्य यह है जिसके लिए यीशु मसीह आ रहे हैं वह यह है कि लोगों को पापों से उद्धार करे.
That is the meaning of the name Jesus.
और यीशु मसीह का नाम का मतलब वही है.
You know, we are told to pray in the name of Jesus.
और हमें कहा गया है कि हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें.
If it is not just to be a mantra that we repeat.
और ये कोई मंत्रा नहीं है जो हम बार बार इसे
you know,
कहते रहे.
In the name of Jesus, in the name of Jesus.
कि यीशु के नाम में, यीशु के नाम में.
Just think about it. What is that name of Jesus mean?
और यीशु यानी ये नाम का मतलब क्या है?
Savior.
उद्धारक.
What does he save us from?
और वो कहाँ, किस बात से हमारे उद्धार करता है?
Here it is. The first time the angel used the name Jesus.
और पहले बार जो स्वर्गदूत जो है यीशु करके नाम जो इस्तेमाल करता है.
Nobody had ever heard that name on the face of the earth till then.
और इस पृथ्वी में अब तक किसी ने इस नाम को सुना नहीं था.
This is the first time.
और ये पहली बार है.
That the name Jesus was heard on this earth.
और पहली बार है जो कि यीशु मसीह का नाम इस पृथ्वी में सुना गया.
He said it is because he will save his people from their sins.
और उसने कहा कि वह अपने लोगों को जो है पापों से उद्धार करेगा.
So whenever I take the name of Jesus, I'm immediately thinking of being saved from sin.
और इसलिए जब भी यीशु करके कहता हूँ तो पाप से मैं जो छुड़ाया गया हूँ उस बात को याद
करता हूँ. And if I'm not being saved from sin increasingly, it is an empty word I'm using.
और जो है इस पाप से मैं अगर आजाद नहीं पाया है, नहीं पा रहा हूँ, तो फिर वे व्यर्थ के शब्द है जो मैं कह रहा हूँ.
Now Jesus could not lift us up to this kingdom of heaven without dying and being raised from the dead.
और यीशु मसीह जो है हमें इस स्वर्ग राज्य के उस ऊंचाई तक नहीं ला सकते हैं जब तक कि वो उसके लिए मरे और फिर जिलाए जाए.
He had to unite us with himself on the cross.
और उस सूली पर जो है अब हम हमारे साथ जो है उसे एक साथ होना है.
So that we had to, as it were, die with him on the cross.
और ऐसा हो कि हम उसके साथ जो है उस सूली पर हम मर रहे हैं.
Like Paul said, I am crucified with Christ.
और जैसा पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मैं सूली पर चढ़ाया गया हूँ.
That's not only Paul. In Romans 6 it says your old man was also crucified with Christ.
और उसे पौलुस के लिए नहीं, परंतु वह कहता है कि तुम हमारा जो पुराना मनुष्य है वह भी जो है क्रूस पर चढ़ाया गया.
You know that's actually what we testify to in baptism.
और बपतिस्मा में हमने जो गवाही दी है वो क्या है?
When you are dipped into the water, you are saying, "My old man is now buried."
और जब पानी में हम डुबाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जो है ये गाड़ा गया है.
Come out of the grave, out of the water, I'm saying.
और जब मैं
a new man coming out of the grave.
पानी से बाहर आता हूँ, एक नया व्यक्ति है जो कब्र से बाहर निकलता है.
This is a mystery, but it is true.
इसलिए ये एक रहस्य की बात है, परंतु ये सच है.
Just like even though I committed my sins in the 20th century, Jesus took my sins in the first century.
और ये भी बात सच है कि जैसे कि ये 20वीं शताब्दी में मैंने जो पाप किया है वो पहले शताब्दी में ही यीशु मसीह ने ले लिया है.
All of us committed our sins in the 20th century, right?
और हमने जो भी पाप किया है हमने ये 20वीं सेंचुरी में किया है.
And of course quite a few in the 21st century too.
और कुछ लोगों ने जो है 21st सेंचुरी में भी किया है.
But Jesus took it all in the first century.
परंतु यीशु मसीह ने वो पहले सेंचुरी में ही ले लिया है.
How is that?
और ये कैसा हुआ?
Because with God there is no past, present, future. He lives in the eternal present.
परमेश्वर के लिए कोई भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है, परंतु वह हमेशा हमेशा वो वर्तमान में ही रहता
है। His name is I am, not I was or I will be.
और उसका नाम जो है मैं हूंगा या मैं था, ऐसा नहीं, परंतु वह कहता है कि मैं हूं।
Anything we do, God knows from all eternity.
और इसलिए जो कुछ हम करते हैं, परमेश्वर हमेशा हमेशा से वह जानता है।
So he could take the sins of all humanity on the cross.
और इसलिए पूरे मानव जाति के पाप को उसने उस सूली पर ले लिया।
All Christians know that.
और सब मसीह ये जानते हैं।
But what all Christians don't know is this.
परंतु सब मसीह जो नहीं जानते हैं वो ये बात है।
He not only took our sins.
कि उसने हमारे पापों को ही नहीं लिया।
He took us onto the cross.
उसने हमें भी जो है उस सूली पर लिया है।
You see, how could he do that? I live in the 20th century.
और मैं तो अभी के शताब्दी में हूँ, मुझे वो कैसे कर सकता है?
Just like he took your 20th century sins on the cross.
जैसे कि हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया
he
है।
He took you on the cross.
और हमें भी उसने अपने ऊपर ले लिया।
And you died with him.
और उसके साथ हम मर गए।
You were buried with him.
उसके साथ हम गाड़े गए।
And when he rose up out of the grave, I rose up with him.
और जब वह मृतकों में से जिलाया गया, तो उसके साथ मैं भी जीवित
हूँ। And not only that.
और उतना ही नहीं,
इन माई स्पिरिट,
मेरी आत्मा में,
when he ascended to heaven, I ascended with him.
जब वो स्वर्ग में गया, तब मैं भी उसके साथ स्वर्ग में गया.
Have you read that in God's word?
और परमेश्वर के वचन में क्या आप उसे पढ़े हैं?
Ephesians chapter 2.
और एफिसियों के दूसरा अध्याय.
It says here.
और यहाँ पर कहता है,
when we were dead, Ephesians 2 verse 5 and 6.
और एफिसियों का दूसरा अध्याय 5 और 6.
When we were dead in our sins, he made us alive together with Christ.
और जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया.
मसीह के साथ, together with Christ, that was 2000 years ago.
और मसीह के साथ जो कि 2000 साल पहले हुआ, तभी उसने हमें जीवित किया.
In a wonderful way, I was raised up with him.
और एक अद्भुत रूप से मैं उसके साथ जीवित
and
हुआ.
And not only raised up with him.
और उसके साथ जीवित ही नहीं हुआ.
Taken right up to the heavenly places, verse 6 with him.
और छठा वचन जैसा कहता है कि मैं मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया.
If Jesus is seated in the heavenly places, Ephesians 2:6 says, I am seated with him there.
अगर यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, तो ये वचन कहता है कि मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ.
Now, if this is true,
और अब ये अगर सच है,
it is true.
तो ये सच है.
And if you believe it is true,
अगर तुम विश्वास करते कि ये सच है,
you know, one of the things about scripture is nothing becomes true in your life until you believe it.
और वचन में ये विशेष बात है कि कुछ भी अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, जब तक वह हमारे जीवन में सच नहीं होता.
Did Christ die for the sins of all the people in Bombay?
और यीशु मसीह क्या इस बम्बई के सब लोगों के लिए वो मारे गए?
He did.
वैसे ही हुआ.
But he, millions of them have not received that forgiveness.
परंतु लाखों लोगों ने वो क्षमा को अब तक प्राप्त नहीं किया.
One reason.
और एक कारण.
They don't believe it.
क्योंकि वे विश्वास नहीं करते हैं.
It wasn't true in your life till you believed it.
और जब तक कि हम इस बात पर विश्वास नहीं किया, तब तक ये हमारे जीवन में सच नहीं था.
When you hear the Bible say that you are crucified with Christ.
और जब हम सुनते हैं कि बाइबल कहती है कि तुम यीशु के साथ सूली पर चढ़ाए गए हो.
If you don't believe it, it's not true.
उस बात पर अगर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो सच नहीं है.
If you don't believe that you were crucified with him, that you were raised up with him, that you were seated in the heavenly places with him, it will not be true till you believe.
अगर हम विश्वास नहीं करते हैं कि हम उसके साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, तो वो जब तक विश्वास नहीं करते, तब तक वो सच नहीं हमारे लिए.
The biggest hindrance to faith is our understanding.
और विश्वास के लिए सबसे बड़ा रुकावट जो है, वो हमारी समझ है.
It says in Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. And don't lean on your understanding.
और नीति वचन में जैसे हम देखते हैं कि पूरे हृदय के साथ तुम परमेश्वर पर भरोसा करो, अपने खुद के समझ में की सहायता न ले.
There are a lot of things which we can't understand, but which are still true.
और अनेक ऐसे बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु वो सच है.
Particularly if God has said so in His Word.
और जो परमेश्वर के वचन में जो हम देखते
हैं. When God says that I have been raised up with Christ, I believe it.
और जब वचन कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ जिलाया गया हूं, तो मैं वो विश्वास करता हूं.
I remember hearing a story of two little boys standing outside their house.
और दो छोटे लड़के थे जो अपने घर के बाहर खड़े थे, उनकी कहानी ऐसी है.
One was about 12 years old and the other was his younger brother, 4 or 5 years old.
और एक जो है 12 साल का था, एक छोटा जो है 5 साल का था.
And they were discussing.
और वे बातचीत कर रहे थे.
And the older boy said, "Hey, the sun has moved."
और बड़ा लड़के ने कहा कि सूरज जो है वह हिल रहा है. जब
इट वॉज देयर इन द मॉर्निंग एंड नाउ इट इज हियर इन द वेस्ट.
और सुबह में जो है वह इस दिशा में था और अभी इस दिशा में निकल गया है.
एंड द लिटिल बॉय सेड नो.
और छोटे लड़के ने कहा कि
you remember what daddy told us?
क्या आपको याद है कि डैडी ने क्या कहा?
That the sun doesn't actually move.
कि ये सूरज जो है वह इस तरह एक जगह से दूसरी जगह पे तो
It's
नहीं जाता है.
Just the earth underneath our feet rotating on its axis.
परंतु ये हमारी पृथ्वी जो है वह अपने स्वयं में जो है घूमते रहती है.
And we think the sun is moving.
तो और हमें लगता है कि ये सूरज जो है वह एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है.
The older boy said,
बड़े लड़के ने कहा,
I didn't feel the earth moving under my feet.
और मुझे तो ये नहीं लगा कि मेरे पृथ्वी के नीचे पृथ्वी हिल रहा है.
I believe what I see.
और उसने कहा कि जो मैं देखता हूँ उसी पर विश्वास करता हूँ.
The younger boy said,
और छोटे लड़के ने कहा,
I believe daddy.
और उसने कहा कि मैं पिताजी पर विश्वास करता हूँ.
You have a choice.
और हमारे पास चुनाव है.
You can believe what you see.
जो हम देखते हैं उसे हम विश्वास कर सकते हैं.
Or you can believe your heavenly father.
या हमारे स्वर्गीय पिता पर हम विश्वास कर सकते हैं.
Who was right?
और कौन सही था?
The one who believed what he saw, the sun moving.
और वो व्यक्ति जिसने देखा कि सूरज एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है.
Or the one who believed his father.
या वो जिसने अपने पिता पर विश्वास किया.
I've often thought the reason why God has allowed the sun to move in the sky like that.
और मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या कारण है कि परमेश्वर ने सूरज को इस तरह जाने के लिए अनुमति दिया है.
To teach us every day, don't believe what you see.
और ये सिखाने के लिए हर दिन कि जो कुछ आप देखते हैं उस पर विश्वास न करें.
Your eyes can deceive you.
क्योंकि तुम्हारे आंखें जो है ये तुम्हें धोखा दे सकती हैं.
If you study geography, you know that the earth right now is rotating under our feet at 1,600 kilometers per hour.
अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि 1,600 किलोमीटर पर आके रफ्तार से जो हमारी पृथ्वी जो है घूम रही है.
I mean, we've been here an hour. Have you felt the earth under you moving at 1,600 kilometers an hour?
और क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि 1,600 किलोमीटर की रफ्तार में जा रही है?
Don't believe what you feel.
और इसलिए हम जो महसूस कर सकते हैं उस बात पर हम विश्वास करें.
Even science teaches us that.
और साइंस भी यही हमें सिखाता है.
So with God's word.
और उसी तरह परमेश्वर के वचन में.
If I can believe that the earth rotates on its axis.
अगर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि ये पृथ्वी जो है अपने स्वयं में फिरती है.
Feel it or see it.
और मैं देख नहीं पाता हूँ और उसे मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ.
I read it in some science book.
परंतु कुछ साइंस बुक में हमने जो देखा है.
Can't I believe what God has said that I've been raised up with Christ?
और साइंस बुक को अगर मैं विश्वास कर सकता हूँ तो परमेश्वर के वचन पर क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि उसके साथ मैं भी जिलाया गया हूँ?
I'll tell you my testimony. It made all the difference in my life when I believed that I was crucified with Christ.
और जब मैंने इस बात पर विश्वास किया कि मैं यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ उस दिन से मेरा जीवन में अनेक बातों को मैंने देखा है.
I don't believe what I see. I believe daddy.
और मैं जो देखता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता, मेरे पिताजी पर मैं विश्वास करता हूँ.
I don't believe what I feel. I could be deceived.
और मैं जो महसूस करता हूँ उस पर भी विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि मैं धोखे में आ सकता हूँ.
God's word has never let me down.
परंतु परमेश्वर का वचन वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं.
If I believe that I am today seated inwardly with Christ in the heavens.
अगर आज मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अंदर से जो है मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ.
Devil is under my feet.
और शैतान मेरे पैरों के नीचे.
All things are under my feet.
और सब कुछ मेरे पैरों के नीचे.
Because all things are under the feet of Christ.
क्योंकि सब कुछ जो है यीशु मसीह के पैरों के नीचे है.
He is my head.
वह मेरा सिर है.
There's no circumstance on earth that can overpower me.
और इस संसार में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मुझ पर विजय पा सकती है.
Because there's no circumstance on earth that can overcome my head.
और मेरे सिर के ऊपर काबू पाने के लिए संसार की कोई परिस्थिति नहीं है.
That is Christ.
और मेरा सिर जो कि यीशु मसीह है.
But here is something more.
परंतु यहाँ उससे भी ज्यादा कुछ.
Colossians chapter 3 verse 1 and 2 says.
और कोलोसियों का तीसरा अध्याय 1-2 कहता है.
If you have really been raised up with Christ.
इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित जिए गए.
And you are seated with Christ in the heavenly places.
किए गए हो और तुम स्वर्गीय स्थानों में हम जो बैठे हैं.
You should be seeking those things which are above where Christ is seated at the right hand of God.
कि खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है.
And you must set your mind on the things that are above and not on the things that are on the earth.
अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ.
So I know whether I believe that I am seated with Christ in the heavenly places or not.
और मैं जानता हूं कि क्या मैं विश्वास करता हूं या नहीं कि मैं यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं.
टेस्ट इज वेरी सिंपल.
और उसका परीक्षा जो है बहुत ही आसान है.
माय माइंड will be more occupied with things in heaven than with things on earth.
और वो ये कि मेरा मन जो है स्वर्गीय बातों के विचारों से भरा हुआ रहेगा न कि संसार के विचारों से.
That's the difference between a true disciple of Jesus Christ and everybody else.
और यही वो फर्क है उन दोनों के बीच में जो कि यीशु मसीह का शिष्य है और दूसरा जो कि नहीं.
See, like I was saying the other day in the public meeting.
और जैसे मैं दूसरे दिन उस पब्लिक मीटिंग में कह रहा था.
There is a part of us which is our human body. Which is made of the same dust that the animals are made of.
और हमारे जीवन में ऐसे कोई भाग है जो कि इस मिट्टी से बनाया गया है जो कि पशु भी बनाए गए हैं.
There is another part in me which is where the Holy Spirit has come that is shows me that I actually belong to heaven.
और परंतु मेरे अंदर दूसरा भी एक भाग है जहाँ की पवित्र आत्मा रहता है और वो कहता है कि मैं और कहीं का हूँ.
I belong to heaven.
मैं स्वर्ग का हूँ.
Now if you look at an animal.
और एक पशु को अगर हम देखते हैं.
You see how man has descended to the level of the animals.
और हम देखते हैं कि मनुष्य किस तरह पशु के स्थान तक जा रहा है.
Look at any dog in any part of the world.
और संसार के कोई भी कुत्ते को अगर हम देखते हैं.
You find its face is always down to the earth.
और उसका चेहरा जो है हमेशा पृथ्वी के नीचे की तरफ.
Anywhere you see a cow, face is down to the earth.
और कोई भी प्राणी को देखे वो नीचे की तरफ ही देखते रहता है.
You see a pig. Faces down to the earth.
सुअर को भी देखे तो वो नीचे ही देखता है.
Have you ever seen an animal walking with his face up to heaven?
और कोई भी प्राणी जो अपने सिर को ऊपर देखते हुए चलते हुए आपने देखा है क्या?
It's got no interest in those things.
और उन बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है.
Its entire interest is in the things of earth.
और उसकी पृथ्वी उसकी पूरी दिलचस्पी जो है इस संसार के बातों पर ही है.
That's how the pigs are.
और उनके लिए इसी तरह है बात.
Some rubbish, can I find some rubbish here or something there for me to eat?
और मुझे इधर या उधर कोई गंदगी दिख जाए मैं उसे खा लूं.
Every earthly minded man is like that.
और हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी के विचारों से भरा हुआ है वो इसी तरह है.
His mind is set on the things of earth.
और उसका मन जो है इस पृथ्वी के बातों पर लगा हुआ है.
Money.
और पैसा.
Property.
और संपत्ति.
Houses and lands.
और घर और जमीन.
Something better on this earth.
और इस पृथ्वी में और कुछ अच्छा और कुछ अच्छा.
That is the proof that man has descended to the level of the animals.
और ये इस बात को साबित करता है कि मनुष्य जो है प्राणियों के स्तर तक उतर गया है.
But what about it says here? Man whose mind is set on the things above.
परंतु यहाँ वचन कहता है कि उसका मन जो है ऊपरी बातों में लगा रहे.
That is the man. Who is in the kingdom of heaven? Who Jesus said can rise even higher than John the Baptist?
और वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में है और वह यूहन्ना बपतिस्मा देता देने वाले से भी महान है.
You know, in the Old Testament, when God asked His children, the children of Israel, to obey His commandments.
और पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा कि उसकी आज्ञाओं का पालन करें.
How did He make them obey?
और किस तरह उसने किया कि वे उसके आज्ञाओं का पालन करें.
Deuteronomy 28 is the classic chapter on this.
और व्यवस्था विवरण जो है उसमें 28 अध्याय ये उसके लिए उत्तम अध्याय है.
The Bible says that in the Old Testament God treated people like little children.
और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को जो है छोटे बच्चों के समान चलाया.
But in the new covenant he treats us like grown up adults.
और नया नियम में हम देखते हैं कि हमें एक बड़े हुए बड़े लोगों के समान वो चलाता है.
A lot of you are parents.
और तुम में से अनेक जो है माता पिता हैं.
How do you make your 3-year-old or 4-year-old child obey you?
और एक छोटा बच्चा जो होता है 3 साल का 4 साल का उसे हम किस तरह आज्ञा पालन करवाते हैं.
All over the world the methods are the same.
और पूरे संसार भर में एक ही तरीका है.
There are only 2 methods.
और दो ही तरीका है.
If you obey me, I'll give you a chocolate.
अगर तुम ये बात को सुनोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा.
Or you do well in that thing, I'll buy you a little bicycle.
और ये अगर अच्छे से करेंगे तो तुम्हें साइकिल हम लेकर देंगे.
A promise of some reward.
और कुछ तो उन्हें हम पुरस्कार देने की वादा करते हैं.
And what is the second method?
और दूसरा तरीका क्या है?
If you don't obey me,
अगर आप मेरे बात को नहीं सुनेंगे,
I'll give you a stick.
और तुम्हें हम जो है छड़ी से मारेंगे.
Everywhere in the world, those are the 2 methods.
और पूरे संसार भर में जो है यही 2 तरीका है.
The chocolate and the stick.
और ये चॉकलेट और छड़ी.
And that's exactly the method God used in teaching Israel to obey.
और इज़राइल को आज्ञा पालन करवाने के लिए परमेश्वर ने यही बात को उसने
Deuteronomy 28
इस्तेमाल किया और व्यवस्था विवरण 28
अध्याय The first 14 verses is the chocolate.
और पहला 14 वचन जो है वो चॉकलेट है
You obey me.
और तुम मेरे आज्ञा पालन
करें. Verse 2.
और दूसरा वचन
If you obey me, I'll bless you in all these ways.
और मेरी आज्ञा पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा इन बातों में.
Wherever you go, you'll be blessed.
और तुम जहाँ भी जाओगे आशीष पाओगे.
See all those things.
और सब आशीषों को हम वहाँ देखते हैं.
Fields will be blessed.
तुम्हारे खेत में
आशीष. Your body will be blessed.
तुम्हारे शरीर आशीषित होंगे.
You will, verse 11, abound in prosperity.
और 11वां वचन तुम संपत्ति में भरपूरता में रहोगे.
Your enemies will all, verse 7, be defeated before you.
और 7वां वचन में तुम्हारे सब शत्रु जो है ये हार जाएंगे.
And all the people in the earth, verse 10, will look at you and say, Hey, God's blessed you.
और पूरे संसार के लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया है.
And they'll be afraid of you.
और वे तुमसे डरेंगे.
And the Lord will make you the head and not the tail, verse 13.
और 13वां वचन में परमेश्वर तुम्हें सिर बनाएगा पूंछ नहीं.
Okay, that's the chocolate.
और ये चॉकलेट की बात है.
All these things.
और ये सब बातें.
Now here's the stick.
और उसके बाद हम जो छड़ी को देखते हैं.
If you don't obey me, verse 15.
और 15वां वचन में जो हम देखते हैं.
You'll be cursed and you'll be cursed and you'll be cursed.
अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम श्राप पाओगे श्राप पाओगे
You'll get all types of diseases, verse 21.
और 21 वचन में सब प्रकार की बीमारियां होगी
You'll get all types of boils in your body, verse 27.
और 27 वचन में तुम्हारे शरीर में जो है फोड़े निकलेंगे
You'll get, verse 28, madness and blindness.
और 28 वचन में पागलपन होगा और अंधापन होगा
And your children will be taken as slaves in verse 41.
और 41 वचन में तुम्हारे बच्चे जो है गुलामी में जाएंगे
Who wants all that?
और किसको ये सब बातें चाहिए?
Says, Lord, it's okay. Don't do that. We'll obey you.
और लोगों ने कहा कि प्रभु ऐसा न कर हम तेरी आज्ञा पालेंगे.
Please don't give me the stick, Lord. I'll obey you.
और हमें ये छड़ी नहीं चाहिए हम तुम्हारे बात को
मानेंगे. Give me the chocolate.
और हमें चॉकलेट दो.
See, that is old covenant obedience.
और ये पुराने नियम की आज्ञा पालन है.
Do you obey God like that today?
और क्या आज हम इस तरह परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं?
Lord, if I obey you, will you give me something earthly?
और मैं अगर मुझे तेरी आज्ञा पालन करूंगा तो मुझे कुछ देगा इस पृथ्वी में?
If I pay my tithes, will you give me a promotion in my job?
अगर मैं अपने दशमांश को बराबर दूंगा तो मेरे ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिलेगा?
And if I don't pay my tithes, will you send me to hospital with sickness?
अगर मैं दशमांश नहीं देता हूँ तो मुझे तो अस्पताल भेज देगा?
Brother, you are under the old covenant.
अभी भी हम जो है पुराने नियम में हैं.
Jesus died and rose again. Did you know that? He has established a new covenant now.
और यीशु मसीह मरकर जीवित हो गए हैं. उन्होंने एक नई वाचा को स्थापित किया है.
When Jesus came, what did he say?
और जब यीशु मसीह आए तब उन्होंने क्या कहा?
Did he tell his disciples, if you obey me, I will give you health and prosperity and all that? Did he say that?
और क्या उन्होंने कहा कि तुम मेरे आज्ञा पालन करोगे तो मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा चंगाई
दूंगा? If you don't obey me, I will put madness and blindness upon you.
और मेरे आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पागलपन दूंगा?
He abolished the old covenant.
और उसने पुराने नियम को उसने समाप्त
किया. And he brought us to a new covenant with his blood.
और उसके रक्त से उसने नई वाचा को स्थापित की.
And this is what he said.
और ये उसने कहा.
All of Deuteronomy 28.
और व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय
रिप्लेस्ड बाय दिस वर्स
और वो इस वचन से जो है अलग होता है
जॉन 14
और यूहन्ना के 14वां अध्याय
एंड वर्स 15
और 15वां वचन
इफ यू लव मी
यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो
माय कमांडमेंट्स
तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे
नो चॉकलेट नो स्टिक
और यहाँ पर कोई चॉकलेट या कोई छड़ी नहीं
If you love me, keep my commandments.
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो.
If you don't love me,
अगर मेरे मुझसे प्यार नहीं करते,
don't keep my commandments. Fine.
मेरी आज्ञाओं का पालन न करें.
You know, in our songs of worship, one of the words we sing very frequently is, "Lord, I love you so much."
और हमारे आराधना के गीत में हम जो हमेशा इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ.
What is the proof of that?
उसका क्या हमें क्या क्या प्रूफ है
दैट यू कीप हिज कमांडमेंट्स
यीशु उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें
व्हेन यू से आई लव हिम बेटर एवरी डे
और हम कहते हैं कि हर दिन मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं
आई लव हिम बेटर एवरी डे
और हर दिन मैं ज्यादा उससे प्यार करता हूं
आई सिंग इट लाइक दिस आई ओबे हिम बेटर एवरी डे
और मैं इस तरह गाता हूं कि मैं हर दिन ज्यादा उसकी आज्ञा पालन करूंगा
आई कैन फूल माय सेल्फ लव कैन बी एन इमोशन
और या तो मैं अपने आप को धोखा में रखूं क्योंकि प्यार जो एक जज्बात हो सकती है.
When I was a younger born again Christian, I did not know the new covenant.
और जब मैं नया विश्वासी था तब ये नए वाचा के बारे में मुझे पता नहीं था.
I thought love means I feel so emotion, you know, just like a boy in love with a girl. Oh.
और मुझे लगा कि प्यार यानी वो एक जज्बात है जो अच्छा लगता है जबकि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और बहुत ही हमें जज्बात होती है.
When I saw movies about Jesus being whipped and beaten and crucified, I'd weep and I say, Lord, I love you so much.
और जब मैं सिनेमा में देखता हूँ कि यीशु मसीह को मारे जा रहे हैं तब मैं रोने लगता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ प्रभु.
But I went away after the next day, after the movie was over, I just lived my same old life, living for myself.
और वो पिक्चर खत्म होने के बाद दूसरे दिन मेरा जीवन अपने स्वयं में मैं जी रहा हूँ.
And I discovered that I didn't really love Jesus at all.
और तब मैंने समझा कि मैं सच में उससे प्यार नहीं किया है.
If I loved Jesus, I'd keep his commandments.
अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसकी आज्ञाओं का मैं पालन करूंगा.
And Jesus said, I must be careful with my speech.
और यीशु ने कहा कि मैं अपने शब्दों में जो कहता हूँ उसमें हम ध्यान से रहे.
I read words like it says in Ephesians 4.
और एफिसियों के चौथा अध्याय जो कहता है.
And verse 29.
चौथा अध्याय 29 वचन.
It's an amazing word.
और बहुत ही अद्भुत वचन है.
Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only that which is good for edification.
कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो.
I want to keep that word.
और मैं इस वचन
I want to obey it.
और वचन को मैं पालना चाहता हूँ.
Not because I want a chocolate.
और इसलिए नहीं कि मुझे चॉकलेट चाहिए.
Not because I am afraid of a stick.
और इसलिए नहीं कि मैं छड़ी से डरता हूँ.
But because
पर इसलिए
I love Jesus.
कि मैं उससे प्यार करता हूँ.
That means in my speech with my wife at home.
और इसका मतलब यह है कि मेरे बातचीत में मेरे पत्नी के साथ जो मैं बातचीत करता हूँ,
there will never be an angry word.
वहाँ पर कोई गुस्से का शब्द नहीं रहेगा.
Never will I raise my voice at my wife.
और मेरे आवाज को अपनी पत्नी की तरफ नहीं उठाऊंगा.
365 days of the year.
और साल के हर दिन में.
Not because I'm afraid of a stick, but because I love Jesus.
और इसलिए नहीं कि मैं छड़ी से डरता हूँ, परंतु मैं यीशु से प्यार करता.
And then when that became the goal of my life, I found meaning to the praise I was singing on Sunday morning.
और जब ये मेरा जीवन का मकसद होने लगा, तब मैं आराधना की जो गीतें गाता हूँ, उसका मतलब समझने लगा.
Then when I say I love you more and more.
और तब मैं जब कहा कि प्रभु मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ.
Seen in results of obedience during the day.
तो फिर वो दिनों में जो मैं देखता हूँ कि आज्ञा पालन में उसके परिणाम को मैं देखता हूँ.
But many don't see it that way.
परंतु अनेक लोग इस तरह नहीं देखते हैं.
Praise the Lord in other tongues on Sunday morning.
और रविवार में सुबह में आकर पर अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति करें.
Shout at their wife in their mother tongue on Sunday afternoon.
और शाम दोपहर को जो है अपने मातृभाषा में जो है अपने पत्नी पर डांटे.
This is the Holy Spirit only control other tongues. He cannot control the mother tongue.
पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा को ही संभालता है, अपने स्वयं की भाषा को वो संभाल नहीं पाता.
That's not the Holy Spirit.
और इस तरह पवित्र आत्मा
नहीं. When I was baptized in the Holy Spirit, I not only got other tongues, He began to control my mother tongue.
और मैं जब पवित्र आत्मा को पाया, उसने मुझे अन्य भाषा ही नहीं दिया, परंतु मेरी स्वयं की जो भाषा है, उसे भी वो बदलने लगा.
I thank God for the gift of tongues. I've spoken in tongues 31 years, and I praise the Lord for it.
और अन्य भाषा के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ. 31 साल से मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ.
I praise the Lord even more that He began to control my mother tongue.
और परंतु मैं परमेश्वर से अधिक मैं मांगने लगा कि वो मेरे भाषा को जो है वो कंट्रोल करे.
That I could live the whole year without ever raising my voice at my wife or yelling or screaming at anyone.
ताकि मैं पूरे साल भर जो अपनी पत्नी को डांटूं नहीं या किसी पर मैं गुस्से से न बातें करूं.
That was the proof that the other tongues I got was really from the Holy Spirit.
और वही वो इस बात को साबित करता है कि वो जो दूसरी भाषा जो मुझे अन्य भाषा मिला है वो पवित्र आत्मा से है.
Otherwise, how do I know that I didn't just manufacture some syllables and call it unknown tongues?
और या तो मैं कैसे अगर ऐसा नहीं है तो मैं कैसे जानूं कि हो सकता है कि मैं स्वयं में कुछ शब्द कहते स्वयं में बनाकर कह रहा हूँ.
Dear brothers, sisters.
और प्रिय भाइयों और बहनों.
There is a higher life than you have experienced so far. That Jesus wants to lead you to.
और हम आज तक जो जीवन अनुभव किए हैं, उससे भी एक ऊंचा जीवन है, जहाँ पर यीशु मसीह हमें ले जाना चाहता है.
The only thing that will prevent you from coming there is if you are satisfied with your current level of life.
और वो एक ही बात है जो कि हमें उस स्तर में जाने से रोक सकती है, वो ये है कि हमारी आज के जो स्थान है उसमें हम तृप्त हो जाते हैं.
Tragedy with so many Christians is they are satisfied with their substandard life.
और ये दुर्भाग्य की बात ये है कि हम जिस तरह जी रहे हैं, नीचे के स्तर में जी रहे हैं, उसी में हम तृप्त हो जाते हैं.
The Bible says rejoice in the Lord always.
और वचन कहता है कि परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो.
And we are happy with just rejoicing on Sunday morning for 2 hours.
परंतु हम तो सिर्फ संडे में सुबह में जब आते हैं 2 घंटे के लिए हम खुश रहते हैं.
I said, Lord, I'm not satisfied with that.
और मैंने कहा कि प्रभु हम इस तरह खुश
नहीं. I want to rejoice in the Lord 24/7.
मैं जो है हर समय में हर क्षण में
24 hours a day, 7 days a week.
और दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मैं तुम्हें खुश रहना चाहता हूँ.
You go to God like that.
और प्रभु के पास
say, Lord, I'm not satisfied with a Sunday morning rejoicing.
और सिर्फ रविवार के सुबह की आराधना खुशी में मैं तृप्त नहीं हूँ प्रभु. इस तरह अगर कहकर हम उसके पास जाते हैं.
I'm not satisfied with controlling my tongue sometimes.
और सिर्फ कभी कभी मेरे जबान को मैं काबू में रखता हूँ, इसमें मैं तृप्त नहीं हूँ.
Lord, I never shout at my wife when other believers are around me.
और जब दूसरे विश्वासी मेरे साथ रहते हैं तो मेरे पत्नी को मैं डांटता नहीं हूँ.
You all agree?
और हम सब सहमत हैं.
But Lord, I want to move up to the place where I never shout at my wife anytime.
परंतु प्रभु मैं उस स्थान में जाना चाहता हूँ जबकि मैं अपनी पत्नी को कभी भी नहीं डांटता हूँ.
What a wonderful life.
और कितना एक सुंदर जीवन है.
Don't you think your wife would be very happy if you enter this life?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी ऐसे बातों से बहुत खुश रहेगी?
Don't you think your husband will be very happy if you enter into this life?
और इस प्रकार के जीवन में अगर हम जाएंगे तो क्या हमारे पति खुश नहीं होंगे?
And your home will be a little bit of heaven on earth.
और हमारा घर जो है इस पृथ्वी में एक छोटा स्वर्ग के समान रहेगा.
Because the kingdom of heaven would have come into your home.
क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है, स्वर्ग का राज्य जो है, वो हमारे घर में आ जाएगा.
So this is the gospel I preach now.
और यही जो वो शुभ संदेश है जो मैं प्रचार करता हूँ.
We can have two heavens.
और दो
heaven.
दो स्वर्ग हैं.
One is now.
और एक आज में है.
And the other is when Christ returns.
और दूसरा वह है जब यीशु मसीह स्वयं आएगा.
What a life.
और कितना महिमा का
this
जीवन
is the good news of the gospel.
और यही ये शुभ संदेश का.
That the kingdom of heaven has come at last to earth.
और ये शुभ संदेश यही है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में आया.
So don't be satisfied with earthly blessings.
और इसलिए सिर्फ इस संसार के आशीषों से हम तृप्त
Then
न हो जाएं.
What about our earthly needs?
तो इस संसार की जरूरतों के बारे में क्या?
The Lord says you seek the kingdom of heaven, all the other things will be added to you.
और वो कहता है कि परमेश्वर के राज्य की आप खोज करो तो बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा.
Whether it's health or earthly necessities, God takes care of that.
और वो स्वास्थ्य हो या संसार की जरूरतें हो,
we don't seek for them.
वो सब वो देता है, हम उनके खोज में नहीं जाते हैं.
They are a bonus God throws in.
और ये ऐसे बोनस है जो परमेश्वर स्वयं
But
देता
we
है.
seek God's kingdom.
जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं.
God bless you all.
परमेश्वर तुम्हें आशीष दे.
Thank you for listening to me.
और धन्यवाद कि हमें आपने सुना.